मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मई का पहला दिन है, वर्ष है 2018 और आज इसे 1 मई 2018 के AFEIS.com के लाइफ मैनेजमेंट में 3 दिनों के लंबे गैप के बाद मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सबका हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत हार्दिक रूप से अभिनंदन भी करता हूं। मित्रों, 1 मई यानी कि मजदूर दिवस, श्रमिक दिवस, और इस श्रमिक दिवस पर मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से, अपनी ओर से और आप सब अपने प्रिय श्रोताओं की ओर से बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी। और मेरी यह शुभकामना विशेष रूप से इस बात से जुड़ी हुई है कि हम भारतीय श्रम का सम्मान करना सीखें। श्रम जो हमारे शरीर का धर्म है, श्रम जो इस प्रकृति के रचनात्मकता का आधार है, इसकी हम पूजा करें, इसकी आराधना करें और अपने जीवन में इसे उतारे भी। तो मित्रों, आइए आज के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आपको शेख सादी साहब की एक कहानी सुनाता हूं। बहुत पहले मैंने एक कहानी सुनाई थी जो शेख सादी साहब लिखते थे, गुलिस्ता उनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना रही है। उनके बारे में मैं थोड़ी सी बात बहुत पहले बता चुका हूं, अब दोबारा बताना मैं जरूरी नहीं समझता। मित्रों, बस एक बात कहना चाहूंगा कि शेख सादी जी का जो काल रहा है, जो समय रहा है, वो आप ये समझ लीजिए कि 1250 सन के आसपास का पीरियड रहा है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितने साल पहले सादी साहब इस धरती पर रहे होंगे। उनकी एक कहानी है, अपनी बात को वो खासकर बहुत ही छोटी छोटी कहानियों के जरिए लोगों तक पहुंचाते थे और उन कहानियों में बड़ा सार होता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कहानियां बड़े मजेदार होती थी, बहुत आसानी से समझ में आने वाली, बड़ी प्यारी, बड़ी कोमल और बहुत ही खूबसूरत छोटी छोटी कहानियां। सच पूछे तो उनकी कहानियों को सुनने के बाद किसी व्याख्या की जरूरत नहीं रह जाती। और देखिए, सादी साहब जिस तरीके से लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे, नीति की बातें बताना चाहते थे, लाइफ मैनेजमेंट के बारे में उन्हें शिक्षित करना चाहते थे, तो वो एक्सपेक्ट नहीं करते थे लोगों से कि वो उनसे प्रश्न करेंगे और फिर वो उसकी व्याख्या करके उन्हें समझाएंगे कि नहीं नहीं मेरे कहने का मतलब यह था। लोग आसानी से समझ जाते थे क्योंकि ये बड़े बहुत ही आसान अंदाज में उन्हें बताया ही करते थे। खैर मित्रों, मैं आपको कहानी सुनाता हूं और अगर समय रहा तो मैं अपनी तरफ से थोड़ी सी, आप यूं कह लीजिए कि उनकी व्याख्या करने की गुस्ताखी करूंगा। आइए हम पहले कहानी को देख लेते हैं, प्यारी सी कहानी, बहुत ही छोटी सी। कहते हैं कि बगदाद शहर में, इराक का नगर बगदाद, कहते हैं कि बगदाद शहर में एक बार झंडे और पर्दे में झगड़ा हो गया। झंडा, आप देखते हैं झंडा ऊंचा रहे हमारा, पर्दा जो हमारे घरों में दरवाजों पर, घरों के दरवाजों पर, खिड़कियों पर लटकता रहता है। झंडे और पर्दे में झगड़ा हो गया। झंडे ने पर्दे से कहा, देखिए झंडा बोल रहा है पर्दे से, मैं और तुम दोनों बादशाह के नौकर हैं और शाही दरबार के गुलाम हैं। मैंने तो बादशाह की सेवा में कभी एक पल को भी आराम नहीं पाया। यह बात झंडा कह रहा है। मैंने तो बादशाह की सेवा में कभी एक पल को भी आराम नहीं पाया, हमेशा सफर में रहना पड़ता है। बादशाह जब भी कहीं जाएंगे तो स्वाभाविक है कि उनके साथ उनका झंडा, उनके राज्य का जो ध्वज है, वह भी उनके साथ जाता है। हमेशा सफर में रहना पड़ता है। तूने न कोई रंज सहा, न किला देखा, न जंगल, न हवा, न गर्द गुबार। तूने यानी कि पर्दा, अब आप देखिए कि पर्दा तो एक ही जगह टंगा हुआ है, सो टंगा हुआ है, वो कहीं मूव नहीं कर रहा है। तो चूंकि वो मूव ही नहीं कर रहा है, वो कहीं जा ही नहीं रहा है, तो उसने न तो कोई तकलीफ सही, न कोई किला देखा। जब युद्ध में राजा जाएंगे तो फिर किला तो देखना होगा झंडे को, ना कोई किला देखा, ना कोई जंगल देखा, ना हवा में फरफराहट को, हवा की फरफराहट को बर्दाश्त किया, और ना गर्द गुबार, आंधी तूफान, कुछ भी नहीं तुमने देखा न सहा, यानी कि तुम मौज में हो। ये पर्दे से कह रहा है झंडा। अब अपने बारे में झंडा फिर क्या कहता है, मेहनत करने में मैं सदा तुमसे आगे रहा हूं, लेकिन फिर भी तुझे अधिक सम्मान क्यों मिलता है। देखिए वो कह रहा है कि फिर भी तुझे अधिक सम्मान क्यों मिलता है। तू चांद से मुखड़े और चमेली जैसी खुशबू वालों के चेहरे पर रहता है पर्दा। और ये जो पर्दा है, ये जो खासकर जो वस्त्र के रूप में जो मुस्लिम महिलाएं अपने चेहरे को ढके रहती हैं, उस पर्दे की बात वो यहां कह रहे हैं। सादी साहब का यहां पर्दे से मतलब उससे है। तू चांद से मुखड़े और चमेली जैसी खुशबू वालों के चेहरे पर रहता है, उधर मुझे नौकरों के हाथ में रहना पड़ता है। झंडे तो नौकर उठा करके, उस समय जब पूरा का पूरा जो हुजूम चलता था, वो सेना जो होती थी अपने हाथ में झंडा उठा करके चलती थी। अब देखिए कि पर्दा इसके जवाब में क्या कहता है। पर्दा बोला, इसका कारण यह है कि मैं तो अपना सिर बादशाह की चौखट पर रखता हूं। अब यहां देखिए कि यहां अब जिस पर्दे की बात कर रहे हैं, वो दरवाजे पर टंगे हुए पर्दे की बात कर रहे हैं, है ना। तो दोनों तरह के पर्दों को उन्होंने ले लिया है, तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैं ये स्पष्ट कर रहा हूं। पर्दा बोला, इसका कारण यह है कि मैं तो अपना सिर बादशाह की चौखट पर रखता हूं, तेरी तरह आसमान में नहीं उठता। जो मनुष्य अभिमान से अपना सिर ऊंचा रखता है, वह सिर के बल गिरा भी करता है। मित्रों, ये उनकी एक छोटी सी कहानी है। देखिए, वैसे झंडे का स्थान बहुत सम्मानजनक होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आज के संदर्भ में, और उस समय भी हम बात करें तो झंडा एक स्वाभिमान का प्रतीक होता था, किसी भी राष्ट्र की सार्वभौमिकता का और स्वाभिमान का प्रतीक, और आज भी ध्वज उसी रूप में है। लेकिन यहां जो वो शिकायत की बात कर, जो झंडा शिकायत कर रहा है, जो महसूस कर रहा है, तो झंडे और पर्दे के इस संवाद के माध्यम से सादी केवल इस तथ्य को स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि जो अकड़बाज लोग होते हैं, जो अभिमानी होते हैं, वो हमेशा अंततः परास्त ही होते हैं, यानी कि परेशान रहेंगे, दुखी होंगे, थके हुए होंगे, झुंझलाए हुए होंगे, शिकायत करते रहे होंगे। तो आप इसे अकड़बाजी से जोड़ करके देख सकते हैं। यहां उन्होंने ध्वज को अकड़बाजी वाले एक चरित्र के रूप में प्रस्तुत किया है। मित्रों, मैं अब एक बार पूरी कहानी को पढ़ देता हूं, तब आपको इसका स्वाद मिलेगा। अदरवाइज बीच बीच में तो मैंने इस स्वाद में बाधा डालने की गुस्ताखी की है, उसके लिए माफी चाहता हूं। मैं अब एक साथ पूरी कथा को पढ़ रहा हूं। कहते हैं कि बगदाद शहर में एक बार झंडे और पर्दे में झगड़ा हो गया। झंडे ने पर्दे से कहा, मैं और तू दोनों बादशाह के नौकर हैं और शाही दरबार के गुलाम हैं। मैंने तो बादशाह की सेवा में कभी एक पल को भी आराम नहीं पाया, हमेशा सफर में रहना पड़ता है। तूने न कोई रंज सहा, न किला देखा, न जंगल, न हवा, न गर्द गुबार। मेहनत करने में मैं सदा आगे रहा हूं, लेकिन फिर भी तुझे अधिक सम्मान क्यों मिलता है। तू चांद से मुखड़े और चमेली जैसी खुशबू चेहरों वालों के चेहरे पर रहता है, उधर मुझे नौकरों के हाथों में रहना पड़ता है। पर्दा बोला, इसका कारण यह है कि मैं तो अपना सिर बादशाह की चौखट पर रखता हूं, तेरी तरह आसमान में नहीं उठता। जो मनुष्य अभिमान से अपना सिर ऊंचा करता है, वह सिर के बल गिरा भी करता है। मित्रों, ये छोटी सी कहानी है। मैं नहीं समझता कि इसके किसी तरह की व्याख्या की आपको जरूरत महसूस हो रही होगी, और सच पूछे तो इसकी व्याख्या कहकर करके मैं आप लोगों की जो समझ है उसके प्रति किसी तरह का संदेह भी व्यक्त नहीं करना चाहता, और उसकी जरूरत भी नहीं है। और सच पूछिए तो यदि मैं कोई संदेह व्यक्त भी करता हूं तो यह बहुत ही गलत भी होगा, इस मायने में नहीं कि यह कोई अपमान होगा, बल्कि मुझे पूरा आप लोगों पर भरोसा है, शत प्रतिशत विश्वास है कि आप सब अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या कर लेंगे, और आपकी अपनी अपनी व्याख्याएं मुझसे भी कई गुना खूबसूरत और प्रभावशाली व्याख्याएं होंगी। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।